एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
स्वागत। आज हम ग्रंथ सार में उतरे हैं जोसेफ कॉनराड के एक ऐसे उपन्यास के गहरे समंदर में जो आपको झकझोर कर रख देगा, हार्ट ऑफ डार्कनेस।
हाँ, अंधकार के हृदय में।
बिल्कुल। और ये सिर्फ आप समझिए अफ्रीका के दिल में एक नदी यात्रा की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया है। हमें तथाकथित सभ्यता के अंधेरे कोनों और इंसान के मन की गहराइयों तक ले जाती है।
सही कहा। और कॉनराड, जिनका अपना कड़वा अनुभव इस कहानी की बुनियाद है, वो हमें दिखाते हैं कि कैसे वो औपनिवेशिक सपने असलियत में नैतिक पतन और क्रूरता का एक भयानक चेहरा बन गए।
तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे, चार्ली मार्लो की यात्रा के साथ चलेंगे, है ना? और वो रहस्यमयी मिस्टर कर्ट्स, उसके सच को टटोलेंगे।
हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये उपन्यास आज भी हमें इतना बेचैन क्यों करता है।
चलिए शुरू करते हैं।
बिल्कुल। कहानी की शुरुआत तो जैसा आपने कहा बड़ी शांत सी लगती है। लंदन की टेम्स नदी पर एक नाव है नेली। शाम का वक्त है और वहां बैठा अनुभवी नाविक चार्ली मार्लो अपने कुछ साथियों को अपनी जवानी की एक यात्रा का किस्सा सुनाना शुरू करता है।
एक ऐसी यात्रा जिसने उसे बदल कर रख दिया।
हाँ बिल्कुल। उसे अफ्रीका की एक अनजान नदी के जरिए सीधे अंधकार के केंद्र तक पहुंचा दिया।
ये जो कहानी के अंदर कहानी कहने का ढंग है ना,
फ्रेम नैरेटिव।
हाँ, फ्रेम नैरेटिव, ये बड़ा दिलचस्प है। ये हमें फौरन मार्लो के नजरिए से जोड़ देता है और साथ ही ये इशारा भी करता है कि सच शायद सीधा सपाट नहीं होता,
उसकी कई परतें होती हैं।
बिल्कुल, कई परतें। और मार्लो की ये कहानी यूं ही नहीं है, मतलब ये सीधे कॉनराड के अपने जीवन से निकली है।
हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है।
कॉनराड, पूरा नाम तो काफी लंबा था, योसेफ थियोडोर कॉनराड कोर्जेनियोस्की।
हाँ, काफी लंबा।
वो एक मंझे हुए जहाजी थे और 1890 में उन्होंने बेल्जियन कांगो की यात्रा की, स्टीमर चलाया वहां,
और वहां जो देखा उसने उन पर एक अमिट छाप छोड़ी।
ये वो दौर था जब बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो को जैसे अपनी निजी जागीर बना रखा था।
सही कहा। हाथी दांत और रबर के नाम पर वहां बेहिसाब जुल्म हो रहा था, लाखों लोगों की जाने गईं।
कॉनराड उसी भयावह सच को मार्लो की आंखों से हमें दिखाते हैं, जैसे एक बूंद में समंदर का खारापन महसूस हो जाए।
हाँ, और मार्लो बताता है कि कैसे बचपन से ही नक्शों पर बनी खाली जगह हैं, खासकर अफ्रीका का वो विशाल अनजाना सा दिल उसे किसी चुंबक की तरह खींचता था, जैसे वो जगहें उसे पुकार रही हों।
एक अजीब सा आकर्षण।
हाँ, फिर उसे मौका मिलता है एक बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी में स्टीमबोट कैप्टन बनने का। वजह भी अजीब थी।
हाँ, वो मुर्गियों वाला झगड़ा।
हाँ, पिछला कैप्टन मुर्गियों पर हुए किसी झगड़े में स्थानीय लोगों के हाथों मारा गया था।
तो मार्लो अपनी एक प्रभावशाली आंटी की मदद से ये नौकरी पा लेता है, लेकिन
नौकरी मिलने की पूरी प्रक्रिया ही जैसे किसी बुरे सपने की शुरुआत हो।
सही कहा, खासकर ब्रसेल्स में कंपनी के दफ्तर का अनुभव। मार्लो को वो शहर कैसा लगता है?
एक सफेद पुती कब्र,
व्हाइटेड सेपल्कर।
बाइबल से लिया गया मुहावरा है ये।
बिल्कुल, ऐसी चीजों के लिए जो बाहर से तो पाक साफ और पवित्र दिखती हैं,
पर अंदर जिनके सिर्फ सड़न और मौत होती है।
क्या ये सीधे सीधे उस पूरे औपनिवेशिक मिशन पर एक टिप्पणी नहीं है? ऊपर से सभ्यता का चोगा और अंदर
लूट और वहशीपन। और फिर वो दो औरतें जो दफ्तर में काला ऊन बुन रही है।
हाँ, वो भी बड़ा सिंबॉलिक है।
मार्लो को वो यूनानी मिथकों की उन तीन देवियों फेट्स जैसी लगती हैं,
जो इंसानों की किस्मत का धागा बुनती और काटती हैं, जैसे वो उसे किसी अनहोनी की तरफ भेज रही हों।
और वो डॉक्टर भी जो अफ्रीका जाने से पहले मार्लो के सिर का माप लेता है।
हाँ, और कहता है कि उसे ये देखने में बड़ी दिलचस्पी है कि वहां जाने वालों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है।
मतलब ये सब मिलकर एक अजीब सा अशुभ सा माहौल बनाते हैं, जैसे कोई अनिष्ट
दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो।
बिल्कुल। फिर मार्लो अफ्रीका पहुंचता है कंपनी के बाहरी स्टेशन पर, और वहां पहुंचते ही बस सभ्यता का सारा नकाब उतर जाता है।
क्या नजारा है वहां, तबाही, बदइंतजामी,
बेमतलब के धमाके, जंग खाती मशीनें जैसे किसी कबाड़खाने में पड़ी हों।
और सबसे सबसे दिल दहलाने वाला वो मौत का कुंज, ग्रोव ऑफ डेथ।
उफ, हाँ, एक पेड़ों का झुरमुट जहां बीमार मरते हुए अफ्रीकी मजदूरों को जानवरों की तरह फेंक दिया गया है धीमी मौत मरने के लिए।
ये है हाथी दांत के व्यापार की असली कीमत। इंसानियत का ऐसा भयंकर अपमान यही मार्लो का सामना औपनिवेशिक हकीकत के सबसे घिनौने सच से होता है।
और उसी जहन्नुम के बीच उसे मिलता है कंपनी का मुख्य अकाउंटेंट। सोचिए जरा,
कमाल है।
चारों तरफ मौत और गंदगी का आलम है और वो साहब अपने सफेद कॉलर वाले सूट और करीने से संवारे बालों के साथ ऐसे बैठे हैं जैसे ब्रुसेल्स के किसी दफ्तर में हो।
कपड़ों पर एक दाग तक नहीं।
हाँ, मार्लो भी हैरान रह जाता है। ये आदमी उस माहौल में अपनी बाहरी सफाई बनाए रखने में कामयाब है।
ये बाहरी दिखावे और अंदरूनी सड़ांध के पाखंड का कितना सटीक प्रतीक है। बिल्कुल। और यही मार्लो पहली बार मिस्टर कर्ट्स का नाम सुनता है।
हाँ, पहली बार। एक बहुत ही काबिल एजेंट जो अंदरूनी इलाके से सबसे ज्यादा हाथी दांत भेजता है। कंपनी के लिए एक बड़ा नाम।
यहीं से कर्ट्स का रहस्य घना होना शुरू होता है। मार्लो जब सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्टीम बोट,
जिसे उसे लेकर अंदर जाना था,
हाँ, वो रहस्यमयी तरीके से नदी में डूबी हुई है।
मतलब और देरी।
हाँ, उसे महीनों इंतजार करना पड़ता है। इस इंतजार के दौरान वो औपनिवेशिक मशीनरी के पुर्जों को और करीब से देखता है।
हाँ, और यहाँ उसकी मुलाकात होती है स्टेशन मैनेजर से। ये आदमी बड़ा अजीब है।
खोखला सा।
बिल्कुल। उसमें कोई खास काबिलियत नहीं, कोई बड़ा विचार नहीं, बस एक खोखलापन। उसकी एकमात्र योग्यता शायद ये है कि वो अफ्रीका की बीमारियों से बचा रहता है
और साजिशें रचने में माहिर है।
हाँ, वो कर्ट्स से बुरी तरह जलता है क्योंकि कर्ट्स बहुत कामयाब है, बहुत ज्यादा हाथी दांत भेजता है। मैनेजर बार बार कर्ट्स के तरीकों पर सवाल उठाता है, कहता है कि वो ठीक नहीं है,
लेकिन असल में उसकी बातों से ईर्ष्या टपकती है,
साफ पता चलता है।
और यही कर्ट्स का मिथक और बड़ा हो जाता है।
बिल्कुल। हमें पता चलता है कि कर्ट्स कोई आम एजेंट नहीं है, वो एक असाधारण प्रतिभा वाला इंसान है। लेखक, कवि, संगीतकार, पेंटर, वक्ता,
एक सार्वभौमिक प्रतिभा।
हाँ, उसे एक संस्था, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द सप्रेशन ऑफ सैवेज कस्टम्स, उसने अफ्रीका भेजा था
एक ऊंचे आदर्श के साथ, वहां के लोगों को सभ्य बनाने के लिए।
लेकिन अब कानाफूसी होती है कि अंदरूनी इलाके के एकांत और असीमित शक्ति ने उसे बदल दिया है।
यही कॉन्रैड वो बड़ा सवाल उठाते हैं जो उपन्यास के दिल में है। क्या हमारी सभ्यता, हमारे नैतिक नियम सिर्फ समाज और बाहरी दबाव का एक पतला सा पर्दा है? क्या ये पर्दा हटते ही इंसान अपने अंदर छिपे उसी आधे अंधेरे में वापस लौट जाता है
जिससे वो बचने का दावा करता है? कर्ट्स का चरित्र इसी भयानक संभावना का प्रतीक बनता जा रहा है।
खैर, महीनों बाद स्टीमबोट ठीक होती है।
हाँ, आखिरकार मार्लो मैनेजर और कुछ यूरोपियन एजेंटों, जिन्हें मार्लो व्यंग से श्रद्धालु या पिलग्रिम्स कहता है,
हाँ, पिलग्रिम्स,
उनके साथ आखिरकार नदी में अंदरूनी इलाके की तरफ बढ़ता है। ये सफर सिर्फ नदी पर आगे बढ़ना नहीं है, ये जैसे समय में पीछे लौटना है।
हाँ, मार्लो महसूस करता है जैसे वो किसी प्रागैतिहासिक धरती पर भटक रहा हो।
वी वर वंडरर्स ऑन अ प्रीहिस्टोरिक अर्थ, घना रहस्यमयी जंगल दोनों किनारों पर दीवार की तरह खड़ा है, जैसे उन्हें घूर रहा हो, उनकी मौजूदगी से बिल्कुल बेपरवाह।
और नदी?
नदी खुद किसी विशाल कुंडली मारे हुए सांप की तरह लगती है जो उन्हें गहरे अनजाने अंधकार में खींच रही है।
इस यात्रा का माहौल ही बड़ा अजीब है। बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका है, कोहरा है, खामोशी है, बस स्टीमर की धीमी आवाज
और कभी कभी जंगल से आती डरावनी आवाजें। इस माहौल में इंसान खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस करता है।
दिलचस्प बात यह है कि मार्लो अपने अफ्रीकी चालक दल, जिन्हें उस समय के यूरोपीय नरभक्षी कहते थे,
हाँ, कैनिबल्स,
उनके आत्मसंयम को देखकर हैरान होता है।
उनके पास खाने को सड़ा हुआ दरियाई घोड़े का मांस है, लेकिन वो भूखे होने के बावजूद मार्लो और उसके साथियों पर हमला नहीं करते।
मार्लो सोचता है कि इन तथाकथित जंगली लोगों में कितना अनुशासन है, जबकि सभ्य यूरोपीय
लालच और क्रूरता में किसी भी हद तक जा रहे हैं। ये विरोधाभास कॉन्राड बार बार दिखाते हैं। फिर अचानक एक दिन घने कोहरे में उन पर तीरों और भालों से हमला होता है।
जंगल से चीखें आती हैं, अफरा तफरी।
हाँ, मार्लो पूरी कोशिश करता है कि स्टीमर को आगे बढ़ाता रहे। इसी हमले में उसका अफ्रीकी सहायक हेल्म्समैन, जो स्टीमर का पहिया संभाल रहा था,
मारा जाता है।
हाँ, एक भाले से। वो मार्लो के पैरों पर गिरकर मर जाता है।
ये मार्लो के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसे सहायक के मरने के दुख से ज्यादा इस बात का डर सताता है कि कहीं इस हमले में कर्ड्स न मारा गया हो।
हाँ, उसे अचानक एहसास होता है कि कर्ड्स से मिलना, उसे सुनना, उसे समझना उसके लिए एक जुनून बन चुका है।
वो कर्ड्स की आवाज सुनने के लिए बेताब है।
इस घटना के बाद मार्लो अपने मरे हुए सहायक के खून से सने जूते नदी में फेंक देता है। एक छोटी सी क्रिया, लेकिन यह दिखाती है कि वो अनुभव कितना भयावह और विचलित करने वाला था
और कैसे वो उस क्रूरता से खुद को अलग करना चाह रहा है। पर क्या वो कर पाएगा?
आखिरकार तमाम खतरों और देरी के बाद वो कर्ट्स के इनर स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जो पहला नजारा दिखता है
रोंगटे खड़े कर देने वाला।
हाँ, स्टेशन के चारों तरफ लगी बाड़ के ऊपर इंसानी सिर टंगे हुए हैं, विद्रोहियों के सिर, जैसा कि बाद में पता चलता है।
ये है कर्ट्स के अविश्वसनीय तरीकों का जीता जागता सबूत। सभ्यता लाने वाला दूत अब इंसानी सिरों से अपने घर को सजा रहा है।
क्या भयानक विडंबना है। यहीं मार्लो की मुलाकात एक और अजीब किरदार से होती है, एक युवा रूसी व्यापारी।
वो हार्ली क्विन जैसा?
हाँ, उसके कपड़े रंग बिरंगे पैबंदों से भरे हैं, जैसे किसी सर्कस का जोकर हो।
ये रूसी कर्ट्स का अंध भक्त है,
पूरी तरह सम्मोहित।
हाँ,
वो कर्ट्स की बातों, उसकी प्रतिभा, उसके ज्ञान से पूरी तरह सम्मोहित है। वो मार्लो को बताता है कि कर्ट्स कितना महान है, कैसे स्थानीय कबीलों से देवता मानते हैं और कैसे उसने यहाँ अपना दबदबा कायम किया है।
लेकिन बातों बातों में वो ये भी बता जाता है,
हाँ, कि कर्ट साथी दांत हासिल करने के लिए आसपास के गांवों पर क्रूर छापे मारता है, कि वो भयानक रस्मों में हिस्सा लेता है और कि ये सिर उसी ने लगवाए हैं।
और रूसी इन सब बातों को या तो नजरअंदाज कर देता है
या उन्हें कर्ट्स की महानता का ही एक हिस्सा मानता है। वो कहता है, आप कर्ट्स को सुनते हैं और फिर आप उसे देखते हैं, वो आपको बड़ा बनाता है।
ये दिखाता है कि कैसे करिश्माई व्यक्तित्व, भले ही वो कितने ही राक्षसी क्यों न हो, लोगों को अंधा बना सकते हैं।
हाँ, रूसी व्यापारी उस भोली भाली पर खतरनाक श्रद्धा का प्रतीक है।
और फिर मार्लो को कर्ट्स की वो रिपोर्ट मिलती है।
हाँ, वो रिपोर्ट जो उसने उसी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द सप्रेशन ऑफ सेवेज कस्टम्स के लिए लिखी थी।
17 पन्नों की शानदार आदर्शवादी रिपोर्ट, जिसमें ऊंची ऊंची बातें लिखी हैं कि कैसे यूरोपियों को इन जंगली लोगों के पास देवता बनकर जाना चाहिए, उन्हें सभ्यता का प्रकाश दिखाना चाहिए।
लेकिन रिपोर्ट के आखिर में कांपते हुए हाथों से कर्ट्स ने एक छोटा सा पोस्टस्क्रिप्ट लिखा है, एक्सटर्मिनेट ऑल द ब्रूट्स,
सारे वहशियों का खात्मा कर दो।
आदर्शवाद से नरसंहार की सोच तक का यह सफर रोंगटे खड़े कर देता है। यह दिखाता है कि कैसे एक इंसान पूरी तरह से अपने ही आदर्शों के विपरीत जा सकता है।
और फिर आखिरकार मार्लो कर्ट से मिलता है। महीनों का इंतजार, इतना रहस्य, इतनी उम्मीदें, और सामने कौन है?
कोई रूपदार शख्सियत नहीं, बल्कि बीमारी से जर्जर एक जीता जागता कंकाल, जिसे लोग स्ट्रेचर पर लाद कर लाते हैं। मौत उसके चेहरे पर साफ दिख रही है।
लेकिन उसकी आवाज,
हाँ, जब वो बोलता है तो उसकी आवाज में अब भी वही जादू, वही अधिकार, वही गहराई है जिसने सबको मोह रखा था। मार्लो को लगता है कि कर्ट्स की असल ताकत शायद उसकी आवाज ही थी, शब्द ही थे।
एक रात जब सब सो रहे होते हैं, मार्लो देखता है कि कर्ट्स अपने तंबू से गायब है।
हाँ, वो बाहर निकलकर देखता है तो कर्ट्स जमीन पर रेंगता हुआ वापस जंगल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है,
शायद उन भयानक रस्मों और उस शक्ति की तरफ जो उसने वहां पाई थी।
मार्लो से रोकता है, उसे वापस सभ्यता की ओर खींचने की कोशिश करता है। ये बड़ा नाटकीय क्षण है।
यहाँ सवाल उठता है कि असल अंधकार किधर है, जंगल में या उस तथाकथित सभ्यता में जहाँ कर्ट्स जैसे लोग पैदा होते हैं।
मार्लो उसे वापस ले आता है, पर क्या ये वाकई बचाव है?
अब वापसी का सफर शुरू होता है। कर्ट्स को स्टीमर पर लाद दिया जाता है ताकि उसे वापस यूरोप ले जाया जा सके,
लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। स्टीमर जैसे जैसे नदी में वापस नीचे की ओर बढ़ता है, कर्ट्स और कमजोर होता जाता है।
वो बुखार में बड़बड़ाता है अपनी योजनाओं, अपनी शोहरत, अपने साम्राज्य के बारे में।
वो मार्लो को अपने कुछ जरूरी कागजात और अपनी मंगेतर की तस्वीर सौंपता है, कहता है कि इन्हें बचा कर रखना।
और फिर एक शाम जब मौत बिल्कुल करीब होती है,
कर्ट्स आसपास देखता है, शायद अपने जीवन के कर्मों को या शायद उस अंधेरे को जिसने उसे निगल लिया था।
वो मार्लो की तरफ मुड़ता है और धीमी पर साफ आवाज में अपने आखिरी शब्द कहता है,
द हॉरर, द हॉरर,
वो भयावहता, वो भयावहता।
और इसके तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है।
ये दो शब्द, द हॉरर, द हॉरर, उपन्यास के शिखर पर है और शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी भी।
हाँ, इनका असली मतलब क्या है, क्या ये उसके अपने भयानक कर्मों की स्वीकृति है? क्या वो उस लालच, उस क्रूरता, उस नैतिक पतन को देख रहा है?
या ये उससे भी बड़ा कुछ है? क्या ये पूरी इंसानियत के दिल में छिपे अंधेरे का, उस वहशीपन का बयान है जो मौका मिलते ही बाहर आ जाता है?
या फिर ये पूरी औपनिवेशिक परियोजना की असलियत पर एक फैसला है कि ये सब कुछ बस एक भयावहता ही थी?
मार्लो के लिए ये शब्द एक तरह की नैतिक जीत है, या कम से कम एक पुष्टि।
हाँ, उसका मानना है कि कर्ट्स ने कम से कम अंत में जिंदगी का, अपनी आत्मा का सच देख लिया, उसका सामना किया।
भले ही वो सच कितना भी डरावना क्यों ना हो, उसने सिर्फ जिया नहीं बल्कि अपने जीने पर एक फैसला सुनाया। मार्लो के लिए ये महत्वपूर्ण है।
हाँ, क्योंकि कर्ट्स की मौत के फौरन बाद मार्लो खुद इतना बीमार पड़ जाता है कि वो भी मौत के दरवाजे से लौटता है।
ये अनुभव उसे कर्ट्स के और करीब ले आता है।
उसे लगता है कि वो समझ सकता है कि कर्ट्स किस अंधेरे में झांक रहा था। जब वो यूरोप लौटता है तो वो एक बदला हुआ इंसान है। उसके अंदर एक खामोशी, एक उदासी बस गई है।
वो अपने अनुभव की पूरी सच्चाई किसी को बता नहीं पाता।
उसे लगता है कि शब्द कम पड़ जाएंगे, कि कोई समझेगा ही नहीं उस भयावहता को।
और इसी कश्मकश में उसकी आखिरी मुलाकात होती है ब्रुसेल्स में कर्ट्स की मंगेतर से, दी इंटेंडेड।
हाँ, वो औरत अब भी कर्ट्स की बनाई हुई आदर्श छवि में जी रही है। उसके लिए कर्ट्स एक महान इंसान था, एक नायक जिसके ऊंचे आदर्श थे।
उसका घर भी अंधेरा है, रोशनी कम है, जैसे वो भी सच की तेज रोशनी से बचना चाहती हो।
और वो मार्लो से पूछती है कि कर्ट्स के आखिरी शब्द क्या थे।
ये उपन्यास का एक और निर्णायक मोड़ है, और काफी विवादास्पद भी।
हाँ, मार्लो के सामने सच बोलने का मौका है, कर्ट्स की असलियत बताने का, लेकिन वो नहीं बोल पाता।
वो उस औरत के भ्रम को, उसकी आस्था को तोड़ना नहीं चाहता।
या शायद उसे लगता है कि सच इतना ज्यादा अंधेरा, इतना ज्यादा भयानक है, टू डार्क ऑल टुगेदर, कि ये सभ्य दुनिया, खासकर ये आदर्शवादी औरत, उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी।
इसलिए वो झूठ बोलता है।
वो कहता है, द लास्ट वर्ड ही प्रोनाउंस्ड वॉज योर नेम।
उसने आखिरी शब्द तुम्हारा नाम लिया था।
एक सफेद झूठ। पर शायद मार्लो को लगता है कि कभी कभी झूठ सच से ज्यादा दयालु होता है।
या शायद ये कॉनराड का इशारा है कि सभ्यता खुद ऐसे ही आरामदायक झूठों पर टिकी है।
हो सकता है ये झूठ इस उपन्यास के एक और गहरे विषय को रेखांकित करता है, सत्य को पूरी तरह कह पाने की या समझ पाने की मुश्किल, खासकर जब वो सत्य बहुत कड़वा और असुविधाजनक हो।
कहानी वापस टेम्स नदी पर ठहरी नाव नेली पर आ जाती है। मार्लो अपनी कहानी खत्म करके चुप हो जाता है।
अंधेरा घिराया है।
हाँ, और कथावाचक जो शुरू में कहानी सुना रहा था, वो टेम्स नदी को देखता है जो अब शहर से निकलकर समंदर की ओर बह रही है।
और उसे लगता है जैसे ये नदी भी कांगो की उस अंधेरी नदी की तरह ही है,
जो एक विशाल अंधकार के हृदय में बहती जा रही है। ये अंत कहानी को सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं रखता।
नहीं,
ये बताता है कि अंधकार सिर्फ जंगली जगहों में नहीं, वो तो सभ्यता के केंद्र लंदन में भी है,
शायद हर इंसान के दिल में भी।
तो ये उपन्यास कई स्तरों पर हमें सोचने को मजबूर करता है। एक तरफ ये साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक लूट के पाखंड और क्रूरता पर एक तीखा हमला है।
बिल्कुल,
ये दिखाता है कि कैसे सभ्यता लाने का मिशन अक्सर सिर्फ लालच और सत्ता का खेल होता है।
दूसरी तरफ ये इंसान के मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरता है।
ये पूछता है कि क्या हमारी नैतिकता, हमारी अच्छाई सिर्फ सामाजिक दबाव का नतीजा है?
क्या एकांत और असीमित शक्ति हमें हैवान बना सकती है? कर्ट्स का पतन इसी का एक भयावह उदाहरण है।
और फिर भाषा और सत्य का सवाल, क्या हम अपने सबसे गहरे अनुभव बयान कर सकते हैं?
क्या सच हमेशा कहा जाना चाहिए, या कभी कभी झूठ ज्यादा मानवीय होता है? मार्लो का अंतिम झूठ इसी दुविधा को दिखाता है।
और कॉनराड के लिखने की शैली भी इसमें मदद करती है। वो चीजों को सीधे सीधे नहीं कहते।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इशारों, प्रतीकों जैसे नदी, अंधेरा, कोहरा, हाथी दांत और अस्पष्टता के जरिए एक माहौल बनाते हैं
जो पाठक को खुद सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, इम्प्रेशनिस्टिक शैली कहते हैं इसे। बाहरी दुनिया का फोटो जैसा चित्रण करने के बजाय उसका मन पर पड़ने वाला प्रभाव या एहसास दिखाना।
वाकई हार्ट ऑफ डार्कनेस एक आसान उपन्यास नहीं है। ये बेचैन करता है, परेशान करता है।
ये हमें उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिन्हें हम शायद देखना नहीं चाहते,
और शायद इसीलिए ये आज भी इतना प्रासंगिक है।
हाँ, क्योंकि ये सत्ता के दुरुपयोग, लालच, आत्मधोखे और इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई के सनातन संघर्ष के बारे में है। ये सवाल उठाता है कि असल बर्बरता कहाँ है, जंगल में या तथाकथित सभ्य समाज के दिल में?
ये हमें याद दिलाता है कि सभ्यता और बर्बरता के बीच की लकीर शायद उतनी मोटी और पक्की नहीं जितनी हम सोचना पसंद करते हैं।
बिल्कुल, यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।